सरकार का कहना है कि वह चीन के साथ बातचीत में देश के हितों को सबसे आगे रखती है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों को लेकर संसद को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच LAC के कुछ क्षेत्रों को लेकर समझ का अभाव है। विदेश मंत्री ने संसद को जानकारी देते हुए कहा कि निरंतर राजनयिक प्रयासों के चलते संबंधों में कुछ सुधार आया है। इधर बांग्लादेश ने अगरतला राजनयिक मिशन में तोड़फोड़ को लेकर नाराजगी जताई है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर इस घटना पर बांग्लादेश ने अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही अगरतला में अपनी सेवाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में एक हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी के बाद से ही भारत में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अगरतला में भी हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग उच्चायोग कार्यालय में घुस गए थे। और अब चर्चा घरेलू राजनीति की। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। भाजपा, शिवसेना और NCP के बीच इसको लेकर पिछले 10-11 दिनों से चर्चा हो रही है। भाजपा विधायक दल की आज बैठक होने वाली है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिलहाल इस रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। इधर महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपनी आपत्तियों को दर्ज कराया। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही कमजोरी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत कहती हैं,
नरेंद्र मोदी को मई 2014 में रुपया मिला 58 रुपए प्रति डॉलर, 58 से 85 की छलांग मोदी जी ने लगाई रुपए के लिए, ये आपके सामने लेखा जोखा है। तो रुपया तो संभले संभल नहीं रहा है, रुपया तो गिरता ही जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस गड्ढे को खोदकर प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा ढूंढी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते थे। बीजेपी के कुछ बददिमाग लोग आपसे कहेंगे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बड़ा हाई है, $48 बिलियन RBI ने फॉरेक्स रिजर्व से खर्चा किए हैं रुपए को बचाने के लिए, और उसके बाद भी रुपया माने मान नहीं रहा है, शतक लगाने की ओर बढ़ता ही जा रहा है।
घरेलू बचत में आई गिरावट को लेकर सुप्रिया सिनेत ने सवाल उठाया।
11.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 2019-20 में हमारी सेविंग्स थी, 5 साल के अंदर वो घटकर 6.5 लाख करोड़ रह गई, करीब 44% सेविंग्स घट गई। जो बचत के लिए जमा करके पैसा गरीब आदमी मध्यम वर्ग बैंक में रखता है, FD कराता है, कहीं म्यूचुअल फंड खरीद लेता है, थोड़ा बहुत कोई बचत करके अपने बैंक अकाउंट में रखता है, आज वो मजबूर है क्योंकि नौकरी नहीं है, आय कम है, महंगाई की मार है, तो वो मरता क्या ना करता वो अपनी भविष्य की बचत को घसीटकर खर्चा करने को मजबूर है।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कुरान के अपमान के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव के दोषी पाए जाने के बाद भाजपा ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। आपको बता दें कि पंजाब की एक अदालत ने बेअदबी के मामले में नरेश यादव को सजा सुनाई है। इसको लेकर भाजपा नेता शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी पर बरसती हैं।
साथियों, ये बात सिर्फ कुरान शरीफ की बेअदबी की नहीं है, या भगवत गीता हो या बाइबल हो, ये बात है उस शातिर दिमाग सोच की, उस काली सोच की, उस सत्ता की हवस की, जिसके चलते ये पार्टी कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है।
आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को लगातार घेर रही है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, इसके चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आम आदमी पार्टी के निशाने पर हैं। इधर अमित शाह ने न्याय व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा,
मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने, और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है।
चंडीगढ़ पहला शहर बन गया है जहां भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए कहा,
हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई है।
संभल हिंसा को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक मुगलकालीन मस्जिद के सर्वे को लेकर तनाव पैदा हो गया था। इसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए संसद में थोड़े समय के लिए मंगलवार को वॉकआउट भी किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर इस हिंसा को कराया है।
जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है, जो वहाँ के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खासम खास सरकार के हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हिंसा पीड़ितों से मिलने और हालात का जायजा लेने के लिए संभल जा रहे हैं। हालांकि उन्हें संभल जाने से रोकने के लिए प्रशासन भी तैयार है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न, SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।